ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। The whole material world, rather not material world, the whole creation was done by sound. Nad Brahma. Everything came into existence through the sound. And the sound is not only important in Kali Yuga, please understand. It is not that only because Haridam Sankirtan is the Yuga Dharma for Kali Yuga. That's why it is important only in Kali Yuga. The name of the Lord and the sound of the name of the Lord is equally potent and equally important in all the Yugas. Even in Ramchandra's time, the glories of the holy name were exhibited by Lord Ram. When his name was written, they were all floating. When he himself dropped the stone down, it sank. When Vishwamitra ordered Lord Ram to kill Hanuman, and Lord had to follow by shooting Rambaan, Hanumanji was chanting the holy name, so Rambaan couldn't enter the arena, what to speak of Hanuman's body. There was like Suraksha Kavach of the holy name around him. And the Rambaan, the ultimate weapon, failed in front of the name of the Lord. So the holy name of the Lord is equally potent and powerful as much as it is in Kali Yuga in all the Yugas. And especially Lord has come down to establish this fact in Kali Yuga. So anywhere any effectivity has to be achieved, then sound is very important. And the sound is available in enough power, then it can affect the soul. It can change the consciousness of the soul, uplift the soul. So it should speak in English or Hindi? Hindi? Dhvani ka tattva jo hai, ye bahut mahatvapurna hai. Isliye Param Pujya Gurudev बहुत सालों तक खुद साउंड सिस्टम देखा करते थे, खुद हर प्रोग्राम के पहले खुद चेक करते थे ठीक चल रहा है ना सब, उसके बाद ही प्रोग्राम शुरू करते थे। और लोगों को बहुत डांटते भी थे एक साउंड के ऊपर। आज भी राधा गोपीनाथ मंदिर में जो साउंड सिस्टम के बारे में जो है ना अलर्ट रहते हैं ना लोग, ऐसे दो तीन बैठे रहते ऊपर, कारण ये है, ये नहीं कि केवल महाराज का क्लास है तो उस समय देखना है, सारे समय वहां पर अलर्ट रहते हैं, साउंड परफेक्ट होना चाहिए, एक बार भी कूं आवाज नहीं आना चाहिए, वो फीडबैक शुरू हो जाएगा। क्योंकि साउंड के माध्यम से ही अगर सब कुछ प्राप्त होना है तो साउंड अगर गड़बड़ हो गया तो लिंक टूटता ही ना बीच में। समझो तो मैं बोल रहा हूँ कुछ कथा में बीच में, कथा के बीच में आ गया, कथा बोलते बोलते अच्छा अगले साउंड चला गया तो मेरा लिंक टूटेगा कि नहीं, लेकिन टूटेगा, भाव भी टूटेगा, मेरा टेम्पो भी टूटेगा, शायद मैं भूल भी जाऊंगा क्या बोल रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो कथा का जो सार है, कथा जो है, कथा स्वयं जो है, कथा का सार जो है, कथा का जो भाव है, कथा से जो कुछ सीखना है, ये सब कुछ जो टेक होम मैसेज है वो सब कुछ जहां कहां से रहा है, ध्वनि के माध्यम से। अगर ध्वनि बहुत मेरा गला बैठा हुआ है तो फिर गड़बड़ है, मेरा गला ठीक है साउंड सिस्टम खराब है तो गड़बड़ है, कुछ समय ठीक है कुछ समय ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना। देखो कैसे उसमें लेस देन 100% इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा ही सब चीज, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। साउंड ज्यादा होगा तो भी डिस्टर्बेंस है, परेशान हो जाएंगे आप, कान पर ट्राई को कम करो जरा। इस तरह से क्या कहा मैंने, लेस देन 100% इज नॉट एक्सेप्टेड, इट हैज टू बी लाइक दैट। और हर चीज जो है ना वो चिंतन के ऊपर आधारित होती है, जिस चीज का आप चिंतन करते हो वो चीज वही चीज सही होती है। अगर आपने जो साड़ी पहनी है इसके पीछे भी चिंतन है ना, कभी सोचा होगा कि लेना है उसको जाके, कभी गए होंगे लाने के लिए, समय बिताया होगा, कुछ बहुत समय बिताया होगा चुनने में, तो मन में फिट किया होगा कि मुझे लाल साड़ी लानी है, इतना बजट में आना चाहिए, वो दुकान में मिलेगा, संडे को टाइम मिलेगा जाने के लिए, सुबह ट्रैफिक कम होता है तब जाऊंगा, कितना सारा चिंतन होता है उसको, उसके बाद में वो साड़ी प्रकट हो गई है। वैसे ही है, हर चीज का चिंतन आवश्यक है, चिंतन जहाँ होता है वो यशस्वी होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में भी भगवत चिंतन बहुत आवश्यक है। हम लोग जो 16 माला करते हैं ना, 16 माला करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट इससे क्या है, 24 घंटा चिंतन भगवान का होना चाहिए। वो तो हमारा नियम है ना, 16 माला का नियम करने हैं, हमें गुरु जी को प्रॉमिस किया है, दीक्षा लिया है, सबके सामने वचन लिया है, तो कर रहे हैं उसको। 17वां माला करने को बोलो, 17वीं माला करने को बोलो जरा, कितना विचार करेंगे आप। 17वीं माला करना है, आप रे 16 माला तो हो गया, पहाड़ तो चढ़ गए हम लोग, 17वां माला कहां से करेंगे, क्योंकि वो हमारे हिसाब के बाहर हो गए ना, बहुत परेशानी होगी उसके लिए। इतना हमारा गणित कलयुग में पक्का है, लोग इतना सब भगवान के लिए गणित से करते हैं, खुद के लिए बहुत बिना गणित का करते हैं, है ना। खुद के लिए मार्केट जाएंगे तो कैसा बिंदास खर्च करते हैं, जन्माष्टमी डोनेशन को आएगा तो 10 दिन सोचेंगे क्या देना है, कितना देना है, इतना दो कितना दो, इतना दो कितना दो। तो ये 24 घंटा अगर हम उत्स्फूर्त तरीके से भगवत चिंतन करते हैं तो हमारी साधना सफल है। हमारे साधना जितने भी नियम पालन करते हैं लोग, जो करना पड़ता है या हम करते हैं, वो तब सफल है जब उसका परिणाम 24 घंटा चिंतन में होता है, विचार में होता है, मन वही लगा रहता है, तो वही वो सफल है। इसलिए चिंतन बहुत आवश्यक है। और इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो चिंतन नहीं करता है। हम लोग केवल चिंतन नहीं करते, चिंतन में मग्न है हमेशा, खाली विषय अलग है। कोई पैसे का चिंतन कर रहा है, कोई बिजनेस का कर रहा है, कोई स्त्री के ऊपर कर रहा है, कोई और किसी भोग के ऊपर कर रहा है, कोई भगवान के ऊपर कर रहा है, कोई भगवान के धाम पे कर रहा है, कोई भगवान लीला में कर रहा है, कोई भगवत अर्च विग्रह सेवा में कर रहा है, कोई विषयों पर चिंतन कर रहा है। चिंतन निरंतर है सबके लिए, कोई चिंतन से मुक्त नहीं है। हम सब लोग चिंतन में एकदम एक्सपर्ट है, चिंतन का विषय बदलना है मुश्किल। जैसे आपने भी ये प्रोग्राम किया, आज किया ना, बहुत सारा चिंतन किया ना, कई दिन से चल रहा होगा चिंतन आपका, तो वो चिंतन के बिना कैसे प्रकट होगा। हर एक वस्तु जो प्रकट है दुनिया में वो तो किसी पहले वाले चिंतन का परिणाम है। जैसे भगवान ने भी चिंतन किया, मैं आऊंगा, राधा रानी का प्रेम क्या है मुझे जानना है। आप सोच सकते हैं, भगवान ने पूरा एक अवतार खर्च कर लिया उसे, एक पूरा एक ट्रिप खर्च कर लिया, ओनली टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो उनका चिंतन का विषय था, क्या है क्या ये चीज, राधा रानी का प्रेम क्या है। उसके लिए मैं हमेशा इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है मुझे, हमेशा कितनी बार बोल चुका हूं, एक पूरा अवतार खर्च किया हूं इस बात को समझने के लिए, क्या है क्या ये परिणाम। राधा रानी को गोपियों को छोड़कर, रास लीला में छोड़कर वैसे बैठे थे इंद्रजला के नीचे, राधा रानी के जो चरणों पर चिंतन कर रहे थे, उसका श्लोक आता है राधा सुधा निधि में, कालिंदी तटयोर, याद नहीं पूरा, कालिंदी के तट पर बैठे हुए मुख से राधा रानी का नाम और मन राधा रानी के चरणों में एक एकाग्र करके वहां पर बैठे हुए थे, और वो इतना ही करने से वो गौर वर्ण के बन गए, पूरा गौर वर्ण के बन गए, स्वर्ण कांति। और उतने से समय में उतरो इनको इतना आनंद का अनुभव हुआ, उन्होंने उधर ही राधा रानी को बता दिया कि मैं अभी आऊंगा, इसको अधिक गहराई में समझने के लिए। ये तो केवल झलक थी, इतना इतना मैं हाँ विभोर हो गया हूं इस छोटे से समय के अनुभव के लिए, मैं पूरा समय इसमें करना चाहता हूं, अभी फुर्सत में करूंगा सब अच्छी तरह से। तो आज आपके गौर नित्यानंद, क्या नाम है, नीताई गौर चंद्र, इनका 13वां विवाह दिवस है आपके घर पे, है ना। बहुत भाग्य है हमारा सबका, गौर नीताई जी हमारे घर पे हैं। प्रभुपाद जी भी कहते थे कि क्या कहते हैं, पानी पी लो, वो कहते थे कि कठपुतले नहीं, क्या बोलते हैं, डॉल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुड़िया, गुड़िया के रूप में भी अगर हो सके तो भी ये दो विग्रह जो है वो घर घर में बिठाने चाहिए, ऐसे कहते गौर नीताई। सबके घर में गुड़िया के रूप में क्यों ना हो, लेकिन होने चाहिए। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि देश विदेश में सब घरों में ये निवास करें, क्योंकि इनका अस्तित्व जो है ना, निवास जो है, उसमें कई गुण छुपे हुए हैं। एक तो वो अपराध लेते नहीं है किस चीज का, अपराध स्वीकार नहीं करते, कितनी बड़ी बात है, कलयुग में तो अपराधों का भंडार है पूरा, कुछ भी करो अपराध जगह जगह बैठे हुए हैं। आप कुछ कहे करोगे तो अपराध होते जाएंगे उसमें, जाने अनजाने में, लेकिन ये माफ कर देते हैं। दूसरी बात है, कलयुग में सबसे सर्वोच्च जो प्राप्ति है वो ये देते हैं, तो किसी भी युग में उन्होंने दिया नहीं है। ऐसे कहते हैं कि नरसिंह भगवान ने भी हर समय जिनको वध करते हैं उनको हर समय मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ गारंटी नहीं। तमाल कृष्ण महाराज का प्रवचन सुना है, नॉट गारंटीड दैट अदर अवतारस व्हेन दे विल डिलीवर समबडी दे विल बी डिलीवर्ड। राम कृष्ण गौरांगा ये जब करते हैं तो गारंटी है, बाकी जो होता है वो हो सके तो अच्छा है, नहीं तो गारंटी नहीं। तो एक हो गई मोक्ष की बात, दूसरी हो गई धामवास की बात, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम जो है ना वो धामवास से भी श्रेष्ठ है। धामवास की प्राप्ति वर्सेस श्री कृष्ण प्रेम, अगर आपके सामने रखें तो क्या लेंगे आप, कृष्ण प्रेम नेचुरली, क्योंकि धामवास में आप रहेंगे लेकिन मन वासना में विषय में बना रहेगा तो कुछ गारंटी नहीं कि भाई भगवत चिंतन में रहेगा कि ईश्वर में रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम मतलब गारंटी, आपको आप कहीं भी रहो, नरक में रहोगे तो भी चलेगा, श्री कृष्ण प्रेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो सर्वोच्च प्राप्ति है। इसलिए वो क्या कहते हैं, मम जन्मनी जन्मनी श्वरे भवता भक्ति राहित, मतलब वो मम जन्मनी जन्मनी ये जो शब्द आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो क्यों कहेंगे जन्म जन्मांतर तक, अगर मोक्ष गारंटी है तो वो एक ही जन्म की बात करेंगे ना, जन्म जन्मांतर की बात कब करते हैं आप, तो आपको मोक्ष मिल जाना नहीं है ना, चाहिए भी आपको, लेकिन क्या बोल रहे हैं, आपके चरणों की भक्ति चाहिए मुझे, भगवतार भक्ति रही तो की गई, वो ये दे रहे हैं। इनका संग इनका निवास यानी वो कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे, सर्वोच्च प्राप्ति है, सर्वोच्च प्राप्ति, मोक्ष भी उसके सामने लघुता है, लघु लघुता कृता लघु बन जाता है उनके सामने, इतना आनंद है। और जो कृष्ण प्रेम ये दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कृष्ण उसके वजह से हमारे अधीन हो रहे हैं, अपने आप को भक्तों के अधीन करा देते हैं, इसलिए इनका निवास होना बहुत आवश्यक है। और क्या करते हैं, बहुत सादगी से वो सर्वोच्च प्राप्ति कराते हैं, ऐसा नहीं कि अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा आपको, राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा, गोमेध यज्ञ करना पड़ेगा, कई हजारों साल तक करते रहना पड़ेगा तब जाकर ये वो देंगे सर्वोच्च प्राप्ति, ऐसे भी नहीं, वो सर्वोच्च आसान तरीके से ये सर्वोच्च प्राप्ति करेंगे। इसलिए तुम केवल घर में रहना ही, घर में हमारे आना ही सबसे भाग्य की बात है। तो इसलिए वो एक बंगला में श्लोक है, इसको याद नहीं आ रहा मुझे, वो चैतन्य महाप्रभु के कृपा पर कहते हैं विचार करना चाहिए। क्या श्लोक है वो?
श्री कृष्ण चैतन्य दया करो हो विचार,
दया करो और विचार। आगे क्या लिखा
है? चित्ते पावे चमक।
श्री कृष्ण महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के दया पर विचार करना चाहिए, और जब ये विचार करेंगे तो चमत्कार होगा जीवन में हमारे। दोबारा बोलना चाहिए,
श्री कृष्ण चैतन्य दया करो हो विचार,
श्री कृष्ण चैतन्य दया करो हो विचार,
विचार करते चित्ते पावे चमत्कार,
विचार करते चित्ते पावे चमत्कार। इनका जीवन, इनका लीला चमत्कार से भरा हुआ है, अद्भुत सब चीजें इनकी। अद्भुत मतलब क्या? अति अद्भुत, कल्पना के परे हैं परिस्थिति ने किया है। कभी आपने सुना है क्या कि भगवान ने एक ही अवतार में सारे अवतारों को दर्शन दिया सबको, महाप्रकाश लीला के माध्यम से? कभी सुना है आपने क्या कि नरसिंह भगवान ने अवतार लिया तो सारे भगवान के जितने अवतार थे सब शिष्य उनके भक्त लोग आ गए इसके अंदर? एक ही ऐसा अवतार जिसमें एक अवतार जब भगवान लेते हैं तो उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के भक्त लोग उसमें आते हैं, अपने अपने भगवान को सहायता करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यह अवतार ऐसा है कि भगवान के जितने अवतार थे सारे अवतारों के शिष्य भक्त जो उसमें अवतार लिए। देखो ना, राम के भी अवतार हैं, मतलब राम के भक्त भी हैं उसके अंदर, कृष्ण के भक्त भी हैं, क्या क्या नहीं है उसके अंदर, वराहदेव के भक्त भी हैं उसके अंदर, महाभारत के भक्त भी हैं, रामायण के भक्त भी हैं, हर प्रकार के भक्त है इसके अंदर, और सब लोग मोहित होकर आए थे उसमें। नंदगांव के ब्राह्मण थे वो भी आए थे इसके अंदर, वो ब्राह्मण जो आए थे ना हाय हाय वाले, वो भी नंदगांव के ब्राह्मण है। गुहा राजा आया था सदानंद विप्र बनकर, वराहदेव का उनका भी नाम भूल गया मैं, वो भी वो कुलिया पहाड़ में तपस्या करते थे, उनको कुलिया पहाड़ नवद्वीप कोलद्वीप में वराहदेव दर्शन दिया था, और उनको बड़ा दिन आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे कलयुग वाले अवतार में भी आओगे। नाम में भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा अद्भुत चमत्कार इनके अवतार में। इसलिए आपके घर में एक एक ने दो दो चोरा माप हो बैठे, किसी ने किसी बहाने दो दो हो गए आ गए हैं। तो ये हमारे ऊपर एक असीम कृपा है जिसके हम योग्य नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन इनकी कृपा जो है ना वो अकारण रहती है, कोई कारण नहीं रहता उसके लिए। वी कैनॉट सर्च अ क्वालिफिकेशन फॉर विच वी आर डिजर्विंग दिस, समहाउ दे हैव डिसाइडेड टू बी हियर। और यही उनके अवतार की विशेष बात है, औदार्य, अद्भुत औदार्य, कृपा का औदार्य, जो योग्य भी नहीं है। पात्रे अपात्रे ना देखिला ना देखिला स्थाने अस्थान, कोई जगह योग्य है कोई पात्र योग्य है नहीं है, बिना कुछ देखे हुए वो सब लोगों पर अनंत कृपा बरसाते हैं। और एक इनकी विशेष बात है कि एक ही साथ पाप नाश, एक ही साथ कृष्ण प्रेम, एक ही साथ में वादो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनंत निवृत्ति निष्ठा रुचि तथा आसक्ति तथा भाव प्रेम, ये सब टाइम किसको है इतना 8-9 सीढ़ी चढ़ने के लिए जगह में जाएगी तो पाप में डूब रहे थे। यमराज भी परेशान हो रहे थे, क्या करूं इनका अभी मैं, बाकी लोगों का भी पाप होता है उसका भी हिसाब रखना है, लेकिन एक ही आदमी के दो आदमी के पाप रखने में सारा स्टाफ एग्जॉस्ट हो गया मेरा, गड्ढे खोद रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, और खाली रिकॉर्ड रखने से काम नहीं चलेगा, आपको फल भी देना है उसका, इतना रिकॉर्ड है इनका। परेशान थे, परेशान पूरे एग्जॉस्टेड सब लोग, वैसी जगह मदाई को तत्क्षण कृष्ण प्रेम दिया। नहीं तो रूटीन क्या होता है, चले बाप का फल भोगो, नरक में जाओ तड़पो, वहां पर जाके जलो तपो, उसके बाद में फिर थोड़ा सा पश्चाताप हुआ तो किसी भक्त के आसपास जन्म मिलेगा, फिर शुरू करो एबीसीडी, फिर कई जन्म लो, फिर भगवान सोचेंगे क्या करना है, कितना लंबा समय का काम है। चेतना का परिवर्तन है, कोई कोई साधारण चीज नहीं है। लेकिन चेतना का इतना कोने से, इतना निचतम स्थिति से उच्चतम स्थिति पे पहुंचाने का जो परिवर्तन है ना, वो उन्होंने एक क्षण में किया। यमराज है ना, पहले सुन के बेहोश हो गए थे, बेहोश अवस्था में उनको राजहंस पर लेके आए पृथ्वी के पास, फिर जगाया और दिखाया उनको, देखो यही दो है, वो नाच रहे, देखो कितने अश्रु लेकर नाच रहे हैं। फिर बेहोश हो गए, फिर बेहोश हो गए, यकीन ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना उनके पूरे करियर में, कभी ऐसा चमत्कार देखा नहीं उन्होंने। पूरा जितना सेवा किया भगवान का आज तक, उसमें ऐसा कोई चमत्कार कभी देखा नहीं। तो यमराज जैसे महाभागवत भी ऐसे भाव विभोर होकर बेहोश हो जाते, ऐसी कृपा है उनकी। क्या सेकंड लाइन था आपका, कृपा विचार करते चित्त पावे चमत्कार। ये तो चित्त चमत्कार सामने आंखों के हो रहा है, यकीन नहीं, क्योंकि उनको समझ रहा था कि ऐसे इतना बड़ा रिकॉर्ड डिलीट कैसे हो सकता है। आई कांट बिलीव दिस। तो उनके एक कृपा के झटके से सब डिलीट हो गया, अब बचा केवल कृष्ण प्रेम। इतना पश्चाताप, इतना अश्रु कि सबके कपड़े धोए उन्होंने मदाई घाट पर, पत्थर खा खा के। लोग ऐसे ना डर डर के पत्थर मारते, बहुत जोर से मारने लगे जी, कभी पत्थर मारने का कुछ करता नहीं है, पत्थर मार मार के। पुराना बदला था ना, पुराना कितना जख्म दिया था सबको उन्होंने, कितना कष्ट दिया था, कितना दुख दिया था लोगों को। वो भी बेचारे डरे थे, वो इतना बहुत पावरफुल था, अभी तो डर डर के कंकड़ मारे, बाद में कुछ बड़े बड़े मार रहे, फिर वो उठा के ये दोबारा मारो, इतना दो मारने से क्या होगा, मैंने इतना सारा आपके ऊपर अत्याचार किया है, अब जी चाहे उतना मारो। लो ऐसे बन गए वो, मधवानंद गोस्वामी बने, जगदानंद गोस्वामी बने उसके बाद, और मधवानंद गोस्वामी का उधर समाधि है नवद्वीप में। तो एक बार गुरुदेव वहां बैठकर ऐसे बहुत देर तक प्रार्थना कर रहे थे, यात्रा के बाद सब चले गए, फिर बैठे हैं आंख बंद करके ऐसे इंटेंसली प्रार्थना कर रहे। तो फिर उठे, जब उठे मैंने पूछा, महाराज जी आप इतनी देर क्या प्रार्थना कर रहे थे, थोड़ा साहस किया उसने। उन्होंने कहा कि ये जगह है ना, ये आशा देने वाली जगह, दिस इज अ प्लेस ऑफ होप, प्लेस ऑफ गिविंग होप। अगर मधाई जैसा व्यक्ति भी, क्या कहते हैं उसको, जिसका उसका उद्धार हो सकता है, तो हमारा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो कलयुग में कोई थे ही नहीं, जितने पापी पूरे दुनिया में जितने लोग थे ना, पूरे लोक में, वो जीवन भर अपने हाईएस्ट कैपेसिटी में जितने पाप कर नहीं सकते थे ना, उतने एक दिन में करते थे। इसलिए माधवानंद गोस्वामी का जो समाधि है, मधाई की समाधि जो है, वो एक आशादायी स्थान है हमारे लिए, प्लेस ऑफ होप। तो वो जो होप, आशा की उम्मीद महाप्रभु दे रहे हैं, उस पर वो चिंतन कर रहे हैं, तो कैसी कृपा है उनकी। और एक उनकी विशेषता क्या है, कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, किसी का वध भी नहीं किया, सबका उद्धार किया, सबके पाप का नष्ट करके उनका उद्धार कर दिया। तो ऐसे अद्भुत चमत्कार है गौरांग महाप्रभु। इसलिए फिर से बोलना श्लोक को,
श्री कृष्ण
चैतन्य दया करी हो विचार। आप करते रहिए घर पे हमेशा चिंतन करते रहिए, कैसी कृपा है उनकी। जैसे जैसे चिंतन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको भी चमत्कार नजर आएंगे, अपने जीवन में भी आएंगे, आजूबाजू में मिलेंगे, भक्तों के जीवन में मिलेंगे। शास्त्र तो है ही, पढ़ेंगे तो मिलते जाएंगे, लेकिन आपको भी अपने जीवन में ये चमत्कारों का अनुभव होता रहेगा। इतनी शक्ति है उनके अंदर। और चमत्कार का मतलब क्या होता है, चमत्कार का डेफिनेशन क्या है, अनबिलीवेबल। वो हो नहीं सकता है, वो होते हुए नजर आएगा तो आपका बोलेंगे चमत्कार हो गया, आज तो होनी अनहोनी होनी हो गई है ना, ऐसा बोलेंगे ना। चमत्कार तब बोलते ना जिसको जो अनहोनी चीज है जो हो गई, आप चमत्कार बोलेंगे। इनका तो पूरा व्यक्तित्व, पूरा लीला ही चमत्कार, अद्भुत चमत्कार, अनबिलीवेबल। वो किसी को विश्वास नहीं होगा। देखो भगवान जब कुछ करते ना, जैसे अभी मैं हूं या आप हो, आपका समय का एक वैल्यू होता है ना। समझो आपका महीने में इतना इनकम है आपका, तो आपके एक घंटे की वैल्यू होती है ना, कि मेरा एक घंटा मतलब इतना बिजनेस होना चाहिए, नहीं तो ये आदमी से मिलकर फायदा क्या है। आई डोंट वांट टू मीट इट, आई मीन ऑफिस ना, आठ घंटे में इतना बिजनेस होना ही चाहिए, नहीं तो बिजनेस करने का मतलब क्या है। तो जैसे भक्त हमारे बिजनेस मैन है, वो तीन तीन मिनट के अपॉइंटमेंट देते लोगों को खड़े खड़े, 3 मिनट्स अपॉइंटमेंट आपको, 3 मिनट्स नेक्स्ट पर्सन, 2 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स, देन अगेन 2 मिनट्स, ऐसा काम करते हैं। तो अगर हमारे जैसे लोगों का एक घंटे का कुछ मूल्य होगा, तो भगवान के एक घंटे का मूल्य कितना होगा, कोई अंदाजा लगा सकते? व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ कृष्णा वन आवर और गौरांग महाप्रभु वन आवर? गौरांग महाप्रभु 48 ईयर्स दैट ही गेव हियर। अरे ये 48 ईयर्स के लीला में हर रोज 3 घंटे कहां बिता रहे हैं? श्रीधर कोल्लू जी के साथ। और क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं, कंप्लीट टाइम पास, कुछ काम नहीं। ऐसे बोले क्या है, कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, झिझिक झिक कर रहे, झिझिक कर रहे, कितने में दो उतने में दो, तुम चीटिंग कर रहे हो, ऐसा करो वैसा करो, रो रहा है बेचारा, वो नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। फिर एंड में इतना घंटे के बाद चर्चा करने के बाद क्या करना है, छींद के ले जाना है फ्री में। अब बोलेंगे भगवान को अपने वैल्यू की, टाइम की कोई वैल्यू है कि नहीं, इतना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन वो श्रीधर कोल्लू जो था ही व्यक्ति ऐसा, जिसके साथ भगवान 3-3 घंटा बिताना भी योग्य समझते थे पूरी बाल लीला में, और किसी को पता भी नहीं कि किधर है निमाई, नोबडी नोज। वैसे जगन्नाथपुरी में 3 घंटे हरिदास ठाकुर के साथ, नो वन न्यूज। जगन्नाथ का दर्शन करते थे, महाप्रसाद देते थे, जगन्नाथ का सीधे आते थे उधर जंगल में पेड़ के नीचे, बकुल के पेड़ के नीचे, और 3 घंटा बिताते थे इसके साथ। फिर भोजन हुआ दोपहर का, फिर 3 घंटे गदाधर पंडित के साथ श्रीमद् भागवत सुनते थे। इससे पता चलता है कि महाप्रभु का जो मूल्यवान समय है वो किसके साथ बिता रहे हैं, उसका मूल्य क्या है ना, वो व्यक्ति का मूल्य कितना है। इसके साथ में ऐसा तथा कथित टाइम पास काम कर रहे हैं भगवान, इट डजंट माइंड स्पेंडिंग। तो ये चमत्कारिक भगवान का अवतार, चमत्कारिक अद्भुत कार्य। तो वही भगवान जब राम के रूप में आए थे तो वो मोदद्रुम द्वीप में आए थे, वरबस्वर मोदद्रुम द्वीप में आए थे। तो मोदद्रुम द्वीप द्वीप जो है वो नवद्वीप में, नवद्वीप में से एक द्वीप है। प्रभु रामचंद्र वहां पर आए और उन्होंने वहां पर वनवास बिताया कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए बिताया। तो वहां पर जब आए तो लक्ष्मण ने एक सुंदर वट के वृक्ष के नीचे उनकी कोठी बनाई, बड़ा आनंद से विहार किया उन्होंने। और उसमें एक दिन ऐसे स्मिता हास्य कर रहे थे, तो सीता मैया पूछती है क्यों आप हंस रहे? तो कह रहे मैं देख रहा हूं कितना सुंदर स्थान है, इसी स्थान में मैं कलयुग में आने वाला हूं, और मैं आऊंगा और मेरे नामों का प्रचार करूंगा, भाव विभोरों का नृत्य करूंगा, 2 विवाह करूंगा, पिता का श्राद्ध करने लिए गया जाऊंगा, वहां मेरी दीक्षा होगी, फिर मैं संन्यास दूंगा और मेरी माता को और मेरी पत्नी को रोते हुए छोड़कर मैं चला जाऊंगा। तो पहले तो सब अच्छे लगे वाक्य उनको, लास्ट के वाक्य सुनकर चकित हो गई वो, बोले क्यों ऐसे करोगे, आपको संन्यास लेना ही है तो विवाह को करते आओ। वो अवतार में इतना सब तड़प छोड़ के तड़पने के लिए छोड़ने के जाने की जरूरत क्या है, माता को तड़पाओगे और पत्नी को भी तड़पाओगे। तो उन्होंने कहा सीता देवी वो 2 प्रकार के प्रेम होते हैं, भगवान बता रहे हैं। एक होता है संयोग का प्रेम जो मिलन में होता है, और एक होता है वियोग का प्रेम। और संत लोगों का कहना है, शास्त्र का कहना है कि वियोग का प्रेम जो है वो संयोग के प्रेम से अनंत गुना अधिक और अधिक सूक्ष्म है, और वो प्रेम मैं मेरे नवद्वीप वासियों को अनुभव कराना चाहता हूं, और आप स्वयं मुझसे विवाह करोगी, विष्णु प्रिया का रूप में आओगी, और आप मेरे वियोग में मेरे सहयोग से भी अधिक प्रेम का अनुभव करो। मैं आपके विग्रह का पूजन अयोध्या नगरी में करूंगा, और उसके बदले में मेरे विग्रह का पूजन आप नवद्वीप में करोगे। कैसे? सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में थी, तो भगवान ने सीता की मूर्ति बनाई और हर एक यज्ञ में उनके साथ में उन्होंने यज्ञ किया, भगवान ने उनका पूजन भी किया। और जब भगवान ने अवतार लिया और संन्यास लेने का समय आया, तो भगवान ने स्वयं अपने हृदय से विग्रह प्रकट किया, धामेश्वर गौराम, और कहा कि इनके रूप में मैं हमेशा आपके संग रहूंगा। जैसे भगवान वर्णन कर रहे हैं अपनी पत्नी, तो वो सीता देवी कहती है कि कैसे होगा आपका ये विग्रह? तो प्रभु कहते हैं कि आप नेत्र बंद करो, और नेत्र बंद करते ही जानकी जी के सामने चैतन्य महाप्रभु का विग्रह प्रकट हो गया। इतना सुंदर स्वर्ण रंग का विग्रह था, आनंद में विभोर, नामों का उच्चारण करते हुए भाव विभोर, शरीर में अष्ट विकार प्रकट हो रहे हैं, और नदिया के सारे अवतार जितने भी लीलाएं थी वो प्रकट हो गई। उनके नृत्य को, उनके नाम संकीर्तन को कोई अंत नहीं था, अनंत। उनके भक्त जो है उनके आनंद को कोई सीमा नहीं थी। ऐसा सुंदर गौर सुंदर का स्वरूप उन्होंने लिखा, और खासियत ये कि सब भक्त जो है ना वो उनके जैसे ही प्रकाशमान, तो जो एक एक भक्त को देख रही थी वो भाव विभोर हो गई। वो उनकी किशोर अवस्था का दर्शन किया, उनकी कुमार अवस्था का दर्शन किया, जैसे कि रस का अनंत सागर थे वो, ऐसा अनुभव उनको हुआ। पूरा विश्व जो है उनके भाव में विभोर होकर से मैडेंड कंप्लीटली, एक पागलों की तरह उसमें भाग ले रही थी विश्व का। और ये सारा दृश्य सीता देवी देख रही थी, तो उन्होंने आंखें खोली तो प्रभु रामचंद्र का दर्शन हुआ। फिर प्रभु रामचंद्र ने, वो एकदम भाव विभोर हो गई देखकर सब कुछ, तो प्रभु रामचंद्र ने उनको शांत किया। तो मोदक रूम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर सीता देवी को इतना मोद आनंद का प्राप्ति हुई, और वो पेड़ के नीचे ना, वट के नीचे, इसलिए मोद ध्रुव। और आगे आने वाला जो मोद है प्रमोद, वो वहां प्रकट हो गया आगे आने वाला। उसी स्थान पर आगे जाकर एक जन्म हुआ भक्त का, तो रामलीला में गुहक राजा थे, गुहा राजा, गुहा वो यहां पर कौन बनकर आए? सदानंद भट्ट, सदानंद विप्र बनकर आए। और चैतन्य भागवतकार लिखते हैं कि वो थे वहां पर जब महाप्रभु का जन्म हुआ, गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ, तभी थे वो। और वो जब देख रहे थे उनको, तो कभी राम का दर्शन हो रहा है, कभी गौरांग का दर्शन, राम का दर्शन, गौरांग का दर्शन। नव दुर्वा दल, जो प्रभु रामचंद्र थे, दुर्वा के जैसे, फ्रेश दुर्वा के चरण था उनका, वो गौर कांति लेकर जन्म ले, वो लौट के आए मोदक दुर्वा द्वीप में, जो मामगाछी कहते हैं उसको, मामगाछी में उनको, उन्हें गौर निदाय का दर्शन किया विक्रम में। फिर उसी जगह उनको सीता राम लक्ष्मण दर्शन दिए, फिर कुछ देर बाद गौर निदाय दिखे, फिर कुछ देर बाद सीताराम लक्ष्मण दिखाई दिए। तो वो तभी समझ गए थे कि मेरे प्रभु जो है वो गौर सुंदर बन पर आए। फिर उन्होंने कहते हैं कि नवद्वीप में जाकर अपना डेरा बसाया, और रोज दर्शन करते थे अपने भगवान का। ऐसा अद्भुत दर्शन मोदक द्वीप में हुआ। तो ये सब क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि अभी भी रामनवमी हुई ना, और आपके घर में गौर निताई का आविर्भाव महोत्सव है, तो राम का विचार मन में से अभी तक गया नहीं, लग रहा चल रहा है पूरा। तो इसलिए ये बताया आपको कि कैसे भगवान के अवतारों का मिलन है। अभी आपको बताता हूँ एक कहानी, और आनंद आएगा सुन के आपको। यहां से प्रभु कहाँ गए? रामचंद्र जगन्नाथपुरी गए वनवास करते थे, और रेमुना में वहां पर निवास कर रहे थे भगवान। तो ऐसे वहां पर बैठ के स्माइल कर रहे हैं, सीता जी पूछती है क्यों हंस रहे हो। उतने में वहां पर एक ग्वाल बाल बहुत सारी गायों को लेकर चला गया, ऐसे गायों को हंकते हुए, और उन्होंने सीता हंस किया। तो कुतूहल बड़ा लक्ष्मण का और सीता का, क्यों आप हंस रहे हो बताओ। यहां आपने पूछा ना कि मैं, उन्होंने पूछा क्यों हंस रहे हो, वो कह रहे हैं कि मैं अगली बार कौन से रूप में आऊंगा उसके बारे में चिंतन कर रहा हूं। और फिर वो गाय और ग्वाल बाल गाय को लेकर चला गया तो और कुतूहल हुआ उनका। आपने पूछा ना मुझे तो अगली बार मैं ग्वाल बाल बनता हूं, ये जगन्नाथपुरी में उन्होंने बताया। गाय चराऊंगा नंगे पैर, उनके गोबर गौमूत्र में रहूंगा, उसका ही सुगंध में रहूंगा, उन्हीं को ही जीवन प्राण बनाऊंगा मेरा। फिर प्रभु रामचंद्र ने अपने वनवास के समय अपने बाण से गोपीनाथ की मूर्ति बनाई, जो आज खीरचोर गोपीनाथ के रूप में वहां प्रसिद्ध है। प्रभु रामचंद्र ने अपने तीर से बनाई, पत्थर को लेकर तीर से, नोकदार तीर से उस मूर्ति को बनाकर स्थापन किया। प्रभु रामचंद्र स्थापन की मूर्ति है। आगे जाकर वो माधवेंद्रपुरी आए कलयुग में, फिर वो सब लीला हुई, फिर वो खीर चोरा गोपीनाथ बने। लेकिन पहले तो ओनली गोपीनाथ थे ना वो। वो त्रेतायुग में भगवान रामचंद्र ने स्थापन किया। प्रभु रामचंद्र की और भी सुंदर लीला है, आप सब जानते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनसुईया देवी का परीक्षा किया था, सतीत्व का परीक्षा करने गए थे, तो बालक बन के रहने लगे वहां पर। फिर तीन पत्नियां आ गई उनकी, एक बार ढूंढे ढूंढे के क्या हुआ इतना देर, कौन सी लंबी परीक्षा ले रहे होती, परीक्षा लेने वो देखो उधर खेल रहे हैं। वो पूछते तीन कन्या माताएं आकर, हमारे पति देव कहाँ है, यहाँ ही आए थे कसौटी करने के लिए। बोलते वो खेल रहे हैं बच्चे बने, वो वापस चाहिए हमको, अभी बहुत हो गया आपका, अभी इतना दिन गले में रहे हम। तो फिर जल छिड़का तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश बने। तो जाने का समय आया तो बोले कि हमको जाने का दिल नहीं कर रहा, आपका वात्सल्य का जो प्रेम है वो इतना लुभावना है कि हमको आपका बालक बन के रहना है, तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके बालक बने। तो नरसिंह ने आशीर्वाद दिया, तो ब्रह्मा जी की तरफ से चंद्र देवता उत्पन्न हुए अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में। विष्णु जी स्वयं दत्तात्रेय बने उनके गर्भ से, और शिव जी दुर्वासा मुनि बने। तीनों देवता उनके पुत्र रूप में आए। वैसे कहते हैं कि अत्रि यानी जब हम त्रिगुण के परे चले जाते हैं, और अनसुया द्वेष मुक्त हो जाते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। दत्त का मतलब क्या है, प्रकट होना। दत्त का मतलब ये है, दत्त अत्रेय, मतलब दत्त जो अत्रेय मुनि के पुत्र थे, इसे दत्तात्रेय, अत्रि अत्रेय, कुंती कौंतेय, अत्रि अत्रेय और दत्त अत्रेय, दत्तात्रेय कि मेन नाम दत्त है उनका। दत्त का मतलब केवल प्रकट होना। तो भगवान बताते हैं कि जब हम त्रिगुण के परे हो जाते हैं, द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो मेन बात तो ये नहीं है, मेन बात ये है कि तीन देवता जब उनके घर प्रकट हुए, लेकिन फिर भी अनुसूया ने कहा कि आपने देखो कैसे भी कुछ भी आप वरदान मांग रहे हो ठीक है, लेकिन आपने मेरी कसौटी करने का प्रयास किया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाओ। तो तीनों पत्थर बनना पड़ा उनको। कहाँ बने पत्थर वो, ब्रह्मा जी बरसाने में बने, शंकर जी नंदगांव में बने, और विष्णु जी भगवान गोवर्धन बने, है ना। वो तीन पत्थर ब्रह्माचल, गोवर्धन और नंदी नंदीश्वर है। लेकिन किसी एक कल्प में प्रभु रामचंद्र ने, हाँ देखो मेन बात कह रहा हूं, सब लोग बाहर देख रहे हैं, मेन बात ये है, ये तीनों पर्वतों की प्रतिष्ठापना प्रभु रामचंद्र ने की है ब्रज में। किसी एक कल्प में उन्होंने ये तीनों पर्वतों को स्थापन किया है, ऐसा प्रभु का कनेक्शन है। जगन्नाथपुर में रामचंद्र है, मोदरपुर में भी है, सब जगह पर है, ऐसे कनेक्शन है। महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी गए हैं, महाप्रभु वृंदावन गए हैं, महाप्रभु उदाव पे थे ही, लौट के भी आए संन्यास लेकर। ऐसा अद्भुत काम है। वो तो सत्ययुग की कथा है। हाँ अभी दोनों सच है। देखो हाँ हर चीज ऐसी है। भगवान के व्यक्तित्व में टोटल विरोधाभास वाली चीजें एक साथ उपस्थित हो सकती है। टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस कैन एग्जिस्ट हार्मोनियसली इन द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये भगवान की विशेषता है। ये भी सच है वो भी सच है दोनों चाहिए। तो इसलिए हमें और एक बात यह है कि वो हनुमान जी चिरंजीवी होने का भगवान ने आशीर्वाद दिया उनको कि आप रहो सबको ले जा रहे हो और आपको रहना है। तो उन्होंने कोई विवाद नहीं किया। अरे प्रभु जी आप मुझे छोड़ के जा रहे हो सबको ले जा रहे हो। आदेश का मतलब आदेश में कोई सोचने का रहता नहीं। आदेश मतलब क्या होता है? अच्छा लगे बुरा लगे इस पर विचार करने का सवाल ही नहीं होता। आदेश मतलब आदेश दैट्स ऑल। आदेश का मतलब एक ही होता है उसको फॉलो करना है। तो रह गए वो। तो फिर द्वापर में क्या बने? द्वापर में एक बार बुला लिया उनको द्वारकाधीश भगवान ने चक्र और रुक्मिणी और गरुड़ का गर्व हरण करने के लिए। ऐसे गुरु जी ने समय पर बुलाया उनको। फिर द्वापर में और एक बार बुलाया और कभी बुलाया। तो महाभारत का युद्ध हो रहा था ना तो बुलाया। बोले अभी आप झंडे पर बैठो और चिल्लाओ गर्जना करो। फिर महाभारत में भी वो आए बीच में। वो वनवास में थे तो कहीं आकाश में ऐसे उड़ के एक फूल आया 1000 पंखुड़ियों वाला कमल ऐसे आकाश में उड़ते उड़ते आ गया कुटे के सामने गिर गया। सो द्रौपदी देवी मोहित हो गई। अभी ये कहाँ से आया? तो भीम से कहती है कि आप जाइए देखो कहाँ से आया आपको मुझे चाहिए। बहुत आकर्षित हो गई हूँ इससे। तो चले गए वो देखने के लिए। तो किसी ने कहा कि वो पार्वती देवी ने जब व्रत किया था ना राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रैमासिक व्रत 90 दिन का व्रत किया था ना वो व्रत के लिए उन्होंने सारे शिवजी के गणों को काम पे लगा के मान सरोवर में ये सौगंधिका फूल की पैदाइश की थी। नाम सौगंधिका था। 1000 पंखुड़ियों का कमल सुगंधित ऐसे दिन में हर दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए संख्या में भगवान को अर्पण करने का प्रण था उसके अंदर उस व्रत में। 90 दिन में हर दिन बढ़ते हुए संख्या में उसको अर्पण करना है उतने पैदाइश भी करनी है ना उसकी। तो मान सरोवर में उन्होंने ये मानस सरोवर ऊपर का हिमालय में जो है वहां पर पार्वती देवी ने इसका निर्माण किया। तो फिर ये मानस सरोवर की ओर चले भीम से। तो रस्ते में एक बंदर बैठा हुआ है। वैष्णव लोग जानवर भी हो तो रांग के जाते नहीं कोई परमात्मा विराजमान है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि उठाओ बंदर हमारे रास्ते में बैठा हुआ है हमको जाना है। तो वो बानर कह रहा है कि मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ मुझसे अभी उठा नहीं जाता है तो मेरी पूछ भी नहीं लाई जा रही मुझे। आप अपने को अगर बल है तो आप ही मुझे बाजू में करो मैं कुछ कहूँगा नहीं आप मुझे बाजू में करो। तो फिर तो बोले क्या है पूछ में क्या है अपने एक हाथ से एक उंगली से कर दूंगा। तो उंगली से करने गए तो कहा हिला वो कुछ हिला ही नहीं। तो एक हाथ से किया प्रयास दोनों हाथ से किया फिर पूरे बल के साथ किया। कितना बल था उनके अंदर? 10,000 हाथियों का बल था पूरा लगाया फिर भी वो टस से मस नहीं हुई पूंछ उसकी। तब जाके दंडवत किया महाराज कौन हो आप अपने रूप को छुपाए मत रखो बताओ आप कौन। तब हनुमान जी प्रकट हो गए दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आप ना मुझे वो रूप को दिखाओ जो रूप में आपने छलांग लगाई थी ना कन्याकुमारी से विराट रूप दिखाओ आपका महारौद्र रूप दिखाओ। तो हनुमान जी ने भीमसेन को दर्शन दिया उस रूप में और आशीर्वाद दिया कि जब भी तुम गदा चलाओगे ना मेरा बल भी रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा रहेगा। जब भी आप हिट करोगे तो मेरा बल भी साथ में रहेगा उसके और तुम्हारे बड़े भाई के ध्वजा में बैठ मैं गर्जना करूंगा शत्रु में थर्रार पैदा करूंगा भय पैदा करूंगा। तो वही हनुमान जी गौरा महाप्रभु समय में भी आए मुरारी गुप्ता बनकर। वो मुरारी गुप्ता इतने प्रिय थे भगवान को, साथ में विद्यार्थी थे वो। मुरारी गुप्ता को इतना परेशान किया भगवान, ऐसा स्कूल में तो पढ़ते थे साथ में, जब वापस आते थे ना तो ये उस स्कूल के मतलब वो गंगा गंगा नाम क्या था उनका, गंगा नारायण चक्कर नहीं,
नहीं, नहीं
गंगादास पंडित, गंगा के किनारे उनका गुरुकुल था, घाट भी उनका। उधर से जब आते थे ना, कहाँ पर कितना दूर है वहां से, ज्यादा दूर नहीं है, उतने रास्ते में भी उसको इतना परेशान करते थे, जो पढ़ा है ना दिन में उसको वो वाद करके गलत साबित करते थे, फिर गलत साबित करके उसी को वापस सत्य साबित करते थे, फिर उसको दूसरा आर्गुमेंट करके गलत साबित करते थे, फिर वापस सत्य साबित करते थे, और बार बार मुरारी गुप्ता को चैलेंज करते थे। अभी ये मैंने बताया ना उसको, अभी आप सत्य करके दिखा, फिर मुरारी गुप्ता हार जाते थे, फिर खुद ही सत्य बताते थे उसको, ऐसे परेशान करते थे। तो मुरारी गुप्ता कहते थे मन में, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा है निमाई, क्या प्राप्त है इसको, इतना कीमती समय मनुष्य जीवन का है, केवल विवाद में व्यर्थ कर रहा है, क्यों ऐसे कर रहे, ऐसे प्रेम से सोचते थे रहे। मतलब कितना प्रेम होगा उनका मुरारी गुप्ता के लिए, सोचो आप कितना आनंद लेते थे वो मुरारी गुप्ता की टांग खींचने में और सब भक्तों को बताते थे कि मुरारी गुप्ता है ना केवल वैद्य नहीं है, ये केवल वैद्य है, समझने वाला व्यक्ति अपराधी है, क्योंकि मुरारी गुप्ता जब किसी का रोग निदान करता है तो रोग निदान के साथ इलाज के साथ में कृष्ण प्रेम भी देता है। इनके पास गया हुआ मरीज बिना कृष्ण प्रेम के लौट के नहीं आता है, इसलिए इनको साधारण वैद्य मत समझना। जो मुरारी कृष्ण है वो इनके हृदय में गुप्त रूप में निवास करते हैं, ये उनके नाम का तात्पर्य है, इसलिए उनका नाम मुरारी गुप्त है। एक दिन महाप्रभु ने कहा मुरारी गुप्ता आप कृष्ण का नाम जप करो, मुरारी गुप्ता ने तुरंत शुरू किया करना, लेकिन रात भर सो नहीं पाए, रात भर सो नहीं पाए, रोते रहे रोते रहे रोते, जब भी कृष्ण का नाम उच्चारण करने का प्रयास है तो राम का ही नाम ही निकलता, रात भर रोए, रात भर प्रयास किया, और सुबह आके महाप्रभु को मिले, गौरा महाप्रभु को निमाई को बोले कि मैं अभी आत्महत्या करने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मैंने हाँ तो कह दिया लेकिन मैं कर तो नहीं पा रहा हूँ, मुझे जबान पता नहीं जबान में क्या प्रॉब्लम है, मैं कृष्ण का नाम सोचता हूँ तो राम का ही नाम निकलता है, इसलिए क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी आत्महत्या करने का विचार है। तो जैसे महाप्रभु ने कहा कि धन्य है आपके राम, जिसको आप जैसा भक्त प्राप्त है, और धन्य वो आप जिसको राम जैसे भगवान प्राप्त है, ब्लेसेड इज द लॉर्ड हु हैज डिवोटी लाइक यू, एंड ब्लेसेड आर यू हु हैज लॉर्ड लाइक लॉर्ड राम, एंड मुरारी गुप्ता यू आर नन अदर देन हनुमान, आप हनुमान हो। उतने में मुरारी गुप्ता की पूछ निकल गई भाव पैदा हो गया, ऐसा भगवान ने बताया है कि ऐसे भगवान ऐसे भक्त होने चाहिए जो किसी भी कीमत पर अपने भगवान का जो है ना निष्ठा या उत्तरदायित्व उनका छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर, उनका जो है ना वो क्या कहते हैं उसको स्थाई भाव है, वो अपने भगवान के प्रति वो उनका स्थाई भाव है, फिक्स्ड फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, तो बदल नहीं सकता है, ऐसे मुरारी गुप्ता है। एक बार सीधे घुस गए उसके घर पे, वराह वराह का शुगर शुगर चिल्लाने लगे, एक उसने लोटा उठाया और ऐसे शुगर का रूप में प्रकट हो गया भगवान, लोटा रखा पृथ्वी के रूप में, मुरारी गुप्ता देखते रह गए ऐसे, घर में भगवान ने वराह का दर्शन दिया, ऐसे अद्भुत चमत्कार किए भगवान, और महाप्रकाश लीला में मुरारी गुप्ता को दर्शन किया, मुरारी देखो देखो मुरारी देखो, तो तुरंत गौरा महाप्रभु जो है ना सीताराम लक्ष्मण के रूप में प्रकट हो गए, और वो भी हनुमान के रूप में प्रकट हो गए, और भाव विभो हो गए, ऐसा अद्भुत लीला चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो ये गौरा महाप्रभु की कृपा समझना बहुत कठिन है, वो जैसे जो योग्य अधिक होते हैं तो बहुत भजन करते हैं, उनको उतना अधिक लाभ होता है, ऐसा हम समझते हैं ना। लेकिन जो अधिक से अधिक पतित होते हैं वो उनको ज्यादा कृपा करते हैं। पूरा विपरीत काम है उनका, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए वो नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं ना, मोसम पतित प्रभु न पाइबे आर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का लीला हमारे लिए बहुत वरदान है, कलयुग में एक आशा है। कलयुग के अंदर इतने सारे विकार, इतने सारे दोष, इतने सारे पाप अपराध भरे हुए हैं, एक तरह से कोई आशा नहीं। कलयुग तो होपलेस टाइम है, लेकिन फिर संत लोग कलयुग की पूजा करते हैं। तो कारण यह है कि एक नाम जो कलयुग का है, कलयुग के अंदर है, वो उसका इतना गौरव है कि वो सारे कलयुग के दोषों को नष्ट कर देता है। और वो नाम लेकर महाप्रभु चैतन्य आए, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो नाम की महती पूर्ण रीति से प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान आए हैं, किसी को भेजा नहीं उन्होंने, स्वयं आए हैं। और गौलोक का जो रास का प्रेम धन है, परमोच्च प्रेम धन जो है, वो हरे कृष्ण महामंत्र में बंद करके सबको देने के लिए आए, पब्लिक इश्यू बनाने के लिए आए, जो प्राइवेट इश्यू का पहले केवल गोपियों के लिए, वो सारी जनता को देने के लिए इस अद्भुत रूप में लेके आए, चमत्कार। तो सबको दे दिया उन्होंने, खुलेआम सबको बांट दिया। अभी हमारे हॉस्पिटल में अभी रिसर्च चल रहा है, हरिनाम संत जप करने के बाद में शुगर लेवल क्या होता है, उसका एक रिसर्च अगले संडे को उसका प्रेजेंटेशन है। सबका शुगर लेवल कम हो गया। तो फिर विचार करने लगा, मैं भी डायबिटिक हूं, मेरा भी नहीं कम हो रहा। तो उसमें बताया गया कि उसको एकाग्रता से करना चाहिए, मन लगाकर। हमारे पास नाम तो है लेकिन हम मन लगाकर भी करते हैं, हमारा सारा नंबर गेम है ना, हमारा सारा हमारा एक हिसाब किताब है, गणित है, व्यवहार है हमारे, एक बिजनेस है हमारा जो भगवान से करना है बाबू। लेकिन जो इसको मन लगाकर एकाग्रता से समर्पित भाव से करता है, उसके जीवन में चमत्कार हो सकता है। इतना एटलीस्ट थ्योरी हमको पता है पूरी तरह से। तो हमारे अंदर कमी क्या है कि हमारे अंदर इतना सर्वश्रेष्ठ नाम प्राप्त होने के बाद भी उसमें हमको रुचि नहीं है, उसमें हमको श्रद्धा नहीं है, उसमें हमको भाव नहीं है, उसमें हमको आसक्ति नहीं है, उसे करने की डिजायर नहीं है, है ना। वो कभी कभी प्रकट होता है, जब कीर्तन होता है कभी भक्त मिलते हैं तो थोड़ा बहुत थोड़ा अच्छा लगता है उसको। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं कि कीर्तन में वो नाम की वैल्यू ज्यादा रहती है और बाकी भी कम रहती है, नाम तो वही है ना वो, लेकिन नहीं हमारे रुचि, सातत्य नहीं उसके अंदर। तो यही है, इसलिए महाप्रभु स्वयं कहते हैं दुर्दैवम इद्रशमिहा न जनि अनुराग, हमें उसमें अनुराग नहीं है। अब तक इतना महात्म्य होने पर भी हम उसमें रुचि लेते नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में है, यही हमारा भाग्य है। अभी तक रुचि नहीं हुई है लेकिन फिर भी हमारे जीवन में है भगवान का नाम। ये न केवल प्रकार वो आता रहता है, हम नहीं इंटरेस्ट है हमको, नींद आ रही है जब तक किसी में, फिर भी प्रोग्राम होता है और कुछ कीर्तन होता है तो आनंद आता है। अभी जब कीर्तन प्रभु जी कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद सेवा संगम में ऐसा कीर्तन होता होगा, हाँ ऐसा मुझे अनुभूति हो रही थी मन में कि वो कीर्तन जब होता था ना तो दिन में एक होता था अलग टाइप का पब्लिक कीर्तन, और रात को होता था बंद दरवाजे का कीर्तन। और उसमें ना ऐसे वर्णन आता है कि वो भक्त लोग है ना कई फीट आकाश में ऐसे अंदर अंदर जो जितना भी सीलिंग है उतना उड़ते थे और धाड़ करके गिर जाते थे नीचे। उसमें कोई भक्त जो है ना वो तो बंडल होके घूमता था ऐसे, ऐसे अनेक प्रकार के विकार होते रूप में भक्तों के अंदर। अश्रु तो अनंत रूप में, अश्रु रोमांच स्तंभ अनंत प्रकार की अश्रु विकार का अनुभव करते थे भक्त लोग। तो मतलब ऐहिक चेतना को नष्ट करने वाला वो कीर्तन होगा, कि आप कौन हो, आपका शरीर कितना फीट का लंबा है, कितना किलो का वजन है उसके अंदर, उसी का भान रहता नहीं था। पूरा आत्म स्तर पे वो रहते थे उसमें, उसमें थकान वकान कुछ होती नहीं थी। तो रात का समय में नींद आना चाहिए आपको, नींद तो आती नहीं थी उनको, दिन भर भी नाचते थे, रात को भी नाचते थे, सोते कब थे, कब सोए हो, एक ही बार वर्णन है उसका, हरि बोल कल से चालू, यस रात में क्यों सुना है, एक ही बार हरि बोल हो गया, फिर उसके आगे 24 साल भगवान के पूरे होने तक सब लोग रात भर दिन भर नाचते थे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इतना अद्भुत जो तुरिया अवस्था होती ना, त्रिगुणातीत अवस्था जो कल्पनातीत भी होती है, वो सबको भगवान ने अनुभव कराया, नींद प्यास भूख सबसे मुक्त कराया। नित्यानंद प्रभु ने भी एक बार कीर्तन किया, 90 दिन बच्चों से कीर्तन कराए, 90 days में खाना पीना सोना नींद वींद सब खत्म। 90 दिन के बाद जब कीर्तन समाप्त होने का समय आया तो बच्चे पूछ रहे समाप्त क्यों रहे, व्हाई इट इज स्टॉपिंग। ऐसा अनुभव महाप्रभु ने दिया है, महाप्रभु के भक्तों ने दिया है। घर में मृत्यु हो गई सुभाष की, बच्चे की, और सुभाष बोल रहा है किसी को बोलना नहीं, कीर्तन मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए कीर्तन चालू रहना चाहिए, कीर्तन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। कितनी श्रद्धा थी कीर्तन पर उसको, खुद का हाँ खुद का बालक भी मृत्यु होने के बाद भी सब पत्नियों को पत्नी को बोल रहे हैं शांति रखो, कीर्तन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। महाप्रभु स्वयं रुक जाते हैं बीच में कीर्तन में, वो सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है, सुभाष को पूछते क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, रो कीर्तन पर, नहीं नहीं आप बताओ कुछ क्या हुआ, सच बताओ मुझे कुछ हुआ है, कहते हैं सही सिंपल भाव से कहते हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। अरे आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, मुझे बताया नहीं आपने, चलो कहां पर दिखाओ मुझे आप। बाद में बहुत लीला है उसके अंदर, कि महाप्रभु सोचते हैं कि ऐसे भक्त को छोड़कर मैं कैसे जा पाऊंगा संन्यास लेने के लिए, हाउ विल आई बी एबल टू लीव सच अ डिवोटेड लाइक श्रीवास, ऐसा अद्भुत भक्त है, इतना श्रद्धा है उसको मुझ पर और मेरे कार्य को, खुद के सुख दुख की परवाह नहीं है उसे, तो खुद की आमदनी कहां से हो रही है उसकी परवाह नहीं, क्या हो रहा है जीवन में परवाह नहीं, सब कुछ महाप्रभु, एवरीथिंग महाप्रभु, इतना समर्पण इतना प्रेम कैसे छोड़ पाऊंगा इनको। ऐसे ऐसे एक एक व्यक्तिमत्व थे महाप्रभु के समय पे। चैतन्य चरितामृत जो है ना वो केवल प्रेम का शास्त्र है, ओनली लिटरेचर ऑफ लव, नथिंग एल्स। अभी साधना वाधना वो सब अलग शास्त्र में है, इसमें प्रेम प्राप्त किए हुए लोग जो है ना वो कैसा प्रेम व्यक्त करते हैं उसका ही वर्णन है उसके अंदर, उनका आदान प्रदान कैसे होता है, उनका चाल चलन कैसे होता है, उनका स्वभाव कैसे होता है, उनका कैसे नम्रता होती है, उसका ही वर्णन है पूरा चैतन्य चरितामृत, परमोच्च शास्त्र है। समझना भी कठिन है, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो बोलेंगे क्या है सब, खाने का ही वर्णन किया पूरा इसके अंदर, तो हर चैप्टर में भोजन का वर्णन है, तो डाइट का किताब है कि क्या है, स्क्रिप्चर है ये, हाँ कुछ रेसिपी किताब है क्या, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि वो समझने के लिए श्रद्धा चाहिए ना, क्या पढ़ रहे हैं आप, लगेगा कि खाली हाँ राघव पंडित की थैली में जितने आइटम रखे हैं वो कोई समझ पाएगा तो वो भगवत धाम चला जाएगा, ये कोई तरीका है क्या भगवत धाम प्राप्त करने का, राघव पंडित की थैली में कितना आइटम है और क्या समझ जाएगा, तो बस ऐसा वरदान है उसके अंदर, तो अश्रद्धालु उसके हंसेगा ये कोई शास्त्र है क्या, कोई नियम नहीं कुछ नहीं, बोला आइटम खाली कितना है बस। लेकिन वो राघव पंडित कौन थे, चंपकलता देवी थी वो, उसका भाव क्या था, किस भाव से बनाया था, कैसे महाप्रभु पाते थे उसको, किस भाव से पाते थे, राघवेर घरे रांधे राधा रानी, राघव पंडित के घर राधा रानी स्वयं आके भोजन बनाया, ऐसा सब भक्त लोगों का चरित्र है इसके अंदर, एक एक भक्त का चरित्र चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन किया गया अद्भुत है सब, इसलिए उसको पढ़ना भी आपको त्रिगुण के परे ले जाएगा, केवल तो आप पढ़ोगे ना उसको, केवल सुनोगे और पढ़ोगे ना तो भी वो आपको त्रिगुण के प्रभाव से मुक्त करेगा, इतनी शक्ति है उसके अंदर महाप्रभु की। और सभी भगवद गीता श्रीमद भागवत सारे अवतारों की लीला सब कुछ उसके अंदर है, हर चीज का संदर्भ दिया गया उसके अंदर, जब मैं सऊदी अरब में था तो मैं सोच रहा था कि भी जो भी लेके जाना है वो स्मगल करके लेके जाना है, कोई ओपन लेके जाने का परमिशन तो है नहीं। बहुत विचार किया क्या ले जाए क्या ले जाए, एक ही कुछ लेके जाना है, क्या लेके जाए क्या लेके जाए क्या लेके जाए। तो मैंने 26 मेडिकल किताब लेके गया, 26 मेडिकल किताब लेके गया, एक सर का कवर लगाया उसको सबको, और चैतन्य चैतन्य उनका कवर फाड़ दिया, सारे चित्रपट फाड़ दिए उसके से, और उसको भी वैसा ही कवर लगाया और लिखा कि टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, और वो ले गया। और जब मैं अकेले में पढ़ता था उसको तो मुझे साक्षात ही अनुभूति होती थी कि इसमें भगवद गीता भी है, भागवत भी है, उसके ऊपर का भी है, सब कुछ है इसके अंदर। और जब मैं उसको पढ़ता था तो ऐसा अनुभव हुआ कि प्रभुपाद जी ऐसे गोद में बिठा कर ना ऐसे कंधे पे और सर पे हाथ घुमाकर ऐसे समझा रहे हैं, सब कुछ है। भगवद गीता का सिद्धांत भी समझाया है, भागवत के भी बहुत रेफरेंसेस दिए हैं, और ऊपर की लीला भी वर्णन कर रहे हैं, ऐसा परिपूर्ण शास्त्र। जब वीरम्बर राजा का वो सैनिकों ने चोरी किया ना आचार्य श्रीनिवास के बैलगाड़ी से, सब शास्त्र चोरी करके ले गए, बुरा वो बड़ा धन है कुछ उसके अंदर, ज्योतिषी ने बताया था उनको कोई बड़ा धन जो है ना, अमूल्य धन तुम्हारे राज्य में प्रवेश करने वाला है। सब चोर सतर्क हो गए, और देखा तो अभी आने वाला तो यही है, बैलगाड़ी में कुछ बांध के लेके आ रहे हैं, तो आपको विश्राम किया पेट ने तो पूरा गायब कर दिया बॉक्सेस को। तो फिर आचार्य श्रीनिवास ने नरोत्तम सामरन को कहा कि आप जाओ अपने, मैं इसको लेके आऊंगा, मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी थी। तो सामरन जी चले गए बंगाल, नरोत्तम चले गए खेतुरी प्रचार करने के लिए, और श्रीनिवास चले गए राज्य में। बहुत देर तक प्रयास करते 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 राज दरबार में प्रवेश प्राप्त किया। फिर राज दरबार में लीला ऐसा किया कि उनके बड़े बड़े पंडितों को परास्त करके वो राजगुरु बने। तो राजगुरु बनने के बाद राजा ने बोला अभी शिष्य बनाऊ तो दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो चाहिए मुझे जो आप लोगों ने चोरा है। कितना प्रयास किया पता है आपको, कितना लीला किया, कितना देर तक उनको ये स्थिति तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा उनको, और राजा को शिष्य बनाया। उसके बाद में राजा ने दक्षिणा मांगा तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में वो जो चोरी, उनको पता था कि इस राज्य में चोरी हुआ है, तो तुरंत लाके दिया उनको बॉक्स। और क्या चमत्कार हुआ उसके अंदर, चैतन्य चरितामृत सबके नीचे रखा गया था, उसके ऊपर सब किताबें रखी गई थी हस्तलिखित। और जब बॉक्स खोला गया, जो भी गांठोड़ा जो भी गांठ थी वो खोली गई, तो चैतन्य चरितामृत सबसे ऊपर पाया गया। उसका आचार्यों ने तात्पर्य दिया है, जैसे वो था ना मक्खन, वो दूध में होता है कि नहीं होता है, होता है ना, लेकिन दिखता है क्या आपको, नहीं। जब उसको दही जमा के उसका मंथन करते हैं ना, तब वो ऐसा दूध के कण कण में विराजमान है वो, लेकिन अदृश्य है, सूक्ष्म रूप में है, लेकिन दही बनाने के बाद मंथन की प्रक्रिया से वो कण कण का जो मक्खन है वो प्रकट होकर गोला बनकर ऊपर आता है, नीचे नहीं जाते ऊपर आते हैं, आपको तुरंत उसको निकालना पड़ता है। वैसे ये जो दूध रूपी सारे शास्त्र है ना, उनका जब मंथन हुआ तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो सार है ना, वो चैतन्य चरितामृत के रूप में प्रकट हुआ। तो सभी शास्त्रों का जो क्रीम है, क्रीम वो चैतन्य चरितामृत के रूप में प्रकट, ऊपर आके प्रकट, नीचे रखा गया, ये उसका अर्थ है। तो ये लीला के माध्यम से भगवान ने हमको दिखाया कि मेरा जो चैतन्य चरितामृत जो है ना, मेरा लीलाओं का जो वर्णन है वो सभी शास्त्रों का सार है। अल्टीमेटली समझना ये है सब शास्त्रों से कि प्रेम क्या होता है, उसका वर्णन इसमें दिया गया है, ये पढ़ोगे समझोगे तो प्रेम क्या है समझ में आएगा। ऐसा प्रोग्राम महाप्रभु का कृपा है हमारे को। तो आचार्य श्रीनिवास जब नवद्वीप गए थे तो इतना रोए हो, इतना रोए, सच्ची माता नहीं थी उस समय, विष्णुप्रिया देवी ने उनके लिए भोजन बनाया था अपने हाथ से, धामेश्वर गौराम को भूख लगा के उनको खिलाया था। तो जब वो पाया ना उन्होंने तो इतना भाव विभोर होकर बेहोश हो गए, सोचने लगे मैं क्यों नहीं था उस समय, मैं तो इस दुनिया में था, मैं क्यों नहीं नवद्वीप में आया जब यहाँ पर बाल लीला कर रहे थे भगवान जगन्नाथ मिश्रा जी थे यहाँ पर, नित्यानंद प्रभु थे, थोड़ा महाप्रभु देव कितना दुर्भाग्य हूं मैं, यहीं पर दुनिया में होते हुए मैं यहां पर नहीं आ पाया, ऐसे करके बेहोश होकर गिर गए ना, तो बेहोश अवस्था में गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया, तूफान नृत्य किया उनके सामने, तो जग गए भाव विभोर होकर और कुछ देर में अदृश्य हो गए, फिर बेहोश होकर गिर गए। क्यों नहीं है नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर चले गए, तब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और जीव गोस्वामी को लेकर परिक्रमा दे रहे थे नित्यानंद प्रभु, तो जब जीव गोस्वामी आए तो सची माता थी उस समय, तो सची माता ने बहू को बोला कि भोजन बनाओ, और बहू विष्णुप्रिया ने भोजन बनाया और धामेश्वर गौराम को अर्पण किया, तो दोनों ने मिलकर उनको खिलाया, तो जीव गोस्वामी वहां भोजन खा के जमीन पर लोटपोट होने लगे और बेहोश हो गए, क्यों नहीं था मैं यहाँ पर, क्यों नहीं था, तो उनको भी दर्शन दिया जाते महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु साथ में थे उनके, महाप्रभु ने दर्शन दिया, फिर बेहोश हो गया, अदृश्य हो गया, उनको कितना विरह का अनुभव हुआ जब वो केवल योग तीर्थ पे दर्शन करने के लिए गए थे, तो कितना उनको महाप्रभु का विरह का अनुभव हुआ, हम लोग कितनी बार दर्शन किए, कितनी बार गिर गए बेहोश होकर, वही जगह है वो यहाँ पर जीव गोस्वामी गए थे, यहाँ पर आचार्य श्रीनिवास गए थे, वही जगह है सब, वहां पर वही शटप्रट लीला हुई थी शिवा सांगन में, उसमें हम लोग कितनी बार गए, तो इसलिए हमको कृपा याचना करनी चाहिए, ये अपने को कंडेम करने की बात नहीं है कि आप सब लोग, हम सब लोग घिरे हुए लोग हैं, पतित लोग हैं, यूजलेस लोग हैं, ऐसा कहने के लिए नहीं कह रहे इसको, इसके लिए कह रहे हैं कि हमको थोड़ी कृपा के लिए याचना करना जरूरी है, रो रो के प्रार्थना करना जरूरी है, जैसे जीव गोस्वामी का वर्णन सुनेंगे ना आप, तो जीव गोस्वामी हर जगह इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतना लोगों को एक ही जगह दिखा रहे हैं, वहां पर रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा याचना कर रहे हैं, महाप्रभु कृपा करो कृपा करो, इसलिए उनको वैसे अनुभव प्राप्त हो रहे, वो इतनी कृपा के अभिलाषी हैं, इसलिए वो दिव्य अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं, और हम लोग अपने अपने ऊपर अपने स्तर पर जाकर कथा सुन के आ रहे हैं, हमारे में उतनी गहराई नहीं है, उतनी गहराई के लिए हमको प्रार्थना करनी है, और गौरव महाप्रभु ले सकते हैं, बताया ना पहले कि पात्र अपात्र ना देखेगा, वो पात्र अपात्र नहीं देखेंगे, वो इच्छा देखेंगे, इच्छा की कितनी तीव्रता हमारे अंदर है उसको देखेंगे, वो फिर कृपा करेंगे, तो सब लोग हम लोग प्रार्थना करेंगे, गौरव महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना करेंगे, इसी जीवन में हमें उस प्रेम को प्रदान करें और हमारा जीवन सफल करें, उनके अवतार कार्य को भी सफल करें, हम जैसे पतितों को भी प्रेम प्राप्ति होगी तो उनका अवतार भी आना, अवतार का भी आना सफल हो गया एक तरह से, सफल तो है ही वो, अधिक सफल हो जाएगा और अधिक सफल हो जाएगा। श्री गौरांग महाप्रभु की
जय,
नित्यानंद प्रभु की
जय,
जय जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा।